भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नमः गोविंदा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पेश गोपी का कांता तप्ता कंचना स्वरूप राधे वृंदावन वृषभानुसुत देवी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री कृष्ण कृष्ण हरे राम जी क्वेश्चन
हरे कृष्ण बाप जी आपके श्री चरणों में प्रणाम बाप जी स्वभाव का विचारों पे क्या असर होता है क्योंकि अगर जो स्वभाव में होगा वही विचार में आ जाएगा क्योंकि स्वभाव तो बदला जा नहीं सकता
देखो जहां तक नेचर है और नेचर के अनुसार क्या विचार आते हैं तो स्वभाव का अवश्य विचार पे असर पड़ता है जिस तरह से एक राजसिक स्वभाव है तो राजसिक स्वभाव वाले को हमेशा विचार राजसिक आएंगे और राजसिक विचार का मतलब क्या होगा कोई बता सकता है लोभ लालच और भी चाहिए ठाठवाट ऐश्वर्य वैभव कीर्ति ये सब एक राजसिक स्वभाव के इंसान को विचार आते हैं अब विचार तो आएंगे ऐसे लेकिन इन विचारों को आप दिशा बदल सकते हैं दिशा बदल सकते हैं जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं जब रावण की सभा में अंगद भगवान राम के दूत बन के गए और जब राम के दूत बन के अंगद जी गए तब रावण ने उनको एक साधारण सा आसन दे दिया साधारण सा आसन दे दिया लेकिन उन्होंने देखा अरे मैं तो राम के भी हाफ पर हूं तो ये मेरा अपमान नहीं है किसका अपमान है राम का अपमान दूसरी ओर आप कहते भक्तों को तो मान अपमान की तुल्य निंदा स्तुति संतुष्ट तो भक्त के लिए तो मान अपमान की कोई बात होती ही नहीं तो यहां तो उन्होंने अपमान समझा तो यहां क्योंकि वो भगवान के बिहाव पर गए थे तो उनका अपमान नहीं हुआ ये बल्कि भगवान का अपमान हुआ और उन्होंने अपनी दूम से अपनी पूंछ से एक आसन बनाया और इतना घुमा घुमा के उसको बढ़ा दिया कि वो रावण से भी थोड़ा बड़ा हो गया तो ये रजोगुण तो था लेकिन इस रजोगुण का उन्होंने राइट यूज किया जैसे जब भक्त में रजोगुण होता है लेकिन वो रजोगुण का उपयोग भगवान की सेवा में करता कैसे मेरे ठाकुर का ऐसा सिंहार होना चाहिए ये इतना वैभव, ऐसी पगड़ी, ऐसा ताज, ऐसे हार, ऐसे श्रृंगार, तो ये है तो सारा ही रजोगुण। लेकिन उसने उस रजोगुण का उपयोग भी भगवान की सेवा में किया। जैसे मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही आप इसको समझना उल्टा, शिला प्रभुपाद कहते कि गोपियों ने काम के द्वारा कृष्ण को पाया, क्योंकि उन्होंने अपना काम अर्थात उनकी जो भी मन की वासनाएं आई भी तो किसके लिए थी? कृष्ण के लिए थी, भगवान के लिए थी। ऐसे आप में तमोगुण तो आएगा, अब आप देखेंगे लक्ष्मण जी को बात बात पे क्रोध आता था, तो ये तो है तो तमोगुण, लेकिन उस तमोगुण का उपयोग वो राम जी के लिए करते थे। तो ऐसे ही अब हमारा कोई भी गुण है, अगर वो भगवान की सेवा में चला जाता है तो गुण तो है। अब गुण है क्या? एक रजोगुण है, लेकिन हमारे गुरु महाराज या तमोगुण है या सतोगुण है, वो कोई भी गुण की दिशा वो भगवान की ओर बदल देते हैं। और जब हमारा गुण तो वही रहेगा, विचार भी राजसी आएंगे, लेकिन यदि वो राजसी विचार भगवान के लिए आते हैं तो वो रजोगुण बुरा नहीं। लेकिन कोई सतोगुण में है, लेकिन वो सतोगुण उसके अपने लिए आते हैं, संसार के लिए आते हैं, तो अच्छा तो है, लेकिन उससे भगवान की कोई सेवा होने वाली नहीं है। इसलिए आपका गुण तो गुण ही है, और गुण के स्वभाव तो स्वभाव है। किसी का बहुत गुस्से वाला स्वभाव है, तो लक्ष्मण जी का कौन सा स्वभाव था? गुस्से वाला था, इसलिए तो उन्होंने सूर्पनखा का नाक काट दिया। लेकिन वो उनका गुस्से वाला स्वभाव किसके लिए सेवा में आया? राम जी की सेवा में आया। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा कोई स्वभाव है, मान लो वो बुरा स्वभाव भी है, लेकिन उस बुरे स्वभाव को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो फिर समझ लेना कि वो बुरा स्वभाव भी अच्छा बन गया, क्योंकि वो भगवान की सेवा में। इसलिए हमारे स्वभाव से हमें विचार तो आएंगे, उसमें दो मत नहीं। इसलिए तामसिक आदमी संसार के लिए तो खतरनाक है, लेकिन तामसिक आदमी भक्ति के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि अगर उसका गुस्सा आया भी तो धर्म की रक्षा के लिए आएगा। अगर राजसिक आदमी बुरा है तो संसार के लिए, अगर सत्संग में आ गया तो वो अपना रजोगुण भगवान की सेवा में लगाएगा और बहुत अच्छे अच्छे वैभवशाली मंदिर बनाएगा, क्योंकि वैभव सतोगुण नहीं है बल्कि रजोगुण है, गुस्सा सतोगुण नहीं है बल्कि तमोगुण है। इसी तरह से मोग आशा, मोग कर्मा, मोग ज्ञान विचेतसा, आपका ज्ञान भी बेकार है यदि वो भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं है। इसलिए हमें हमारे हर चीज यद करोषि, यद करोषि यद स्नामि तद कुरुषु मद अर्पणम, वो मेरे लिए करो। तो अगर हम रजोगुणी होंगे तो विचार तो राजसी आएंगे, लेकिन अगर सत्संग में गए हैं तो राजसिक विचारों का केंद्र कृष्ण हो जाएगा। तामसिक है तो तमोगुण के विचार आएंगे, लेकिन सत्संग गए तो वो तमोगुण में भी केंद्र कौन हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। इसलिए सत्संग क्या करती है, हमारी दिशा और दशा दोनों ही बदल देती है। जी, और कोई प्रश्न?
श्री चिन्मना बाप जी, जैसे आपने अपने लेक्चर्स में बताया है कि जो संसारिक प्यार होता है वो किसी न किसी क्वालिटी को देख के होता है, जैसे सुंदरता हो, टैलेंट हो, बेसिकली कोई भी क्वालिटी को देख के होता है। और जो आध्यात्मिक प्यार है वो अनकंडीशनल है। लेकिन जैसे जैसे आप सत्संग में बताते हैं कि कृष्ण की क्वालिटीज, तो हमको तभी वो अट्रैक्शन होता है। तो ये प्यार उस प्यार से अलग कैसे?
देखो, एक असली है और एक नकली है। याद रखना, कोई भी वस्तु नकली कब बनती है? जब असली होती है। असली नहीं है तो नकली कभी बन ही नहीं सकती है। 500 का नोट मान लो किसी ने नकली बनाया, कब बनाया? जब असली था तो नकली बना। याद रखना, कोई भी नकली वस्तु जब तक असली नहीं है, नकली नहीं बन सकती। अब ये आप पे डिपेंड है कि आपको नकली चाहिए या असली चाहिए। गुण तो कृष्ण में भी, और रुक्मणी ने कृष्ण को नहीं देखा था, सिर्फ कृष्ण के गुण सुने, महिमा सुनी, लीला सुनी और वो अट्रैक हुई। लेकिन वो गुण सुन के अट्रैक हुई, लेकिन वो असली की तरफ अट्रैक हुई। जैसे हमने सुना भाई गोल्ड चमकता है, येलोइश होता है, उसके जेवर बनते, ऑर्नामेंट बनते, तो हमने सुन लिया गोल्ड होता है पीले टाइप का, चमकता है, उसके जेवर बनते हैं। अब जब असली लेने गए तो पता पड़ा 70, पता नहीं 74 का 10 ग्राम है, और नकली लेने गए तो 10,000 में 20 ग्राम ले लो। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप जो संसार के गुण देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं, संसार के लोगों के गुण देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो वो गुण नकली है। जैसे सोना 100 साल के बाद भी चमकता रहता है, नकली सोना हो सकता है 8-10 बार पहनो और उसका रंग उतर जाए। तो कृष्ण के जो गुण है वो अनादि आदिकाल से है और हैं और हैं। लेकिन इंसान के जो गुण देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, मान लो किसी की ब्यूटी देख के अट्रैक्ट हुए, तो वो ब्यूटी जवानी तक तो चलेगी, और जवानी में भी उस समय तक चलेगी जब तक वो मेंटेन कर रहे हैं। जिस दिन उसकी मेंटेनेंस बंद हो गई, शरीर फैलने लग गया, शक्ल सूरत बदल गई। अभी पिछले दिनों में एक हीरोइन देखी मीडिया पे, मैं पहचान नहीं सका वही है, जबकि एक जमाने में उसकी सुंदरता के चर्चे थे। ऐसी ऐसी मोटी, तमड़ा मुंह और अजीब किस्म की। अभी वो कपिल शर्मा के शो में दो हीरोइनें आई थी, एक मौसमी चटर्जी थी। आप लोगों को क्या पता अपने जवानी में मौसमी चटर्जी कितनी सुंदर थी, लेकिन अब वो सुंदर से चली गई। तो हमारी जो भी ब्यूटी है वो नकली है। उस ब्यूटी के मेंटेन रखने के लिए वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको फेशियल कराना पड़ता है, और अभी से नहीं है, शोला श्रृंगार अनादिकाल से आ रहे ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन कृष्ण को अपनी ब्यूटी मेंटेन नहीं करनी पड़ती, गोल्ड को अपनी चमक मेंटेन नहीं करनी पड़ती, वो तो है ही। उसको आप कबट में रख दो, लॉकर में रख दो, और 20 साल के बाद में निकालो तो वो शाइन करेगा। लेकिन जो नकली है उसको 20 साल के बाद निकालो तो उसमें जंग लग चुका होगा, है ना? ऐसे कृष्ण महाभारत के में भी 125 साल संसार की आयु थी, लेकिन 18 वर्ष के लग रहे थे। आपने भगवान का आज तक कोई बुढ़ापे का चित्र नहीं देखा या कभी नहीं देखा हो कि कृष्ण के हाथ में बंसी की जगह लाठी आ गई, कहीं कमर झुकी हुई है और कहीं बुढ़ापे का फोटो। हालांकि पेंटर चाहे तो बना सकते, लेकिन उनकी कल्पना में भी भगवान का बुढ़ापा नहीं आता है, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकता कोई कैसा हो सकता है, क्योंकि वैसा है नहीं। तो भगवान की ब्यूटी असली है और हमारी ब्यूटी नकली है। इसलिए उस ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे नकली सोने की ब्यूटी नकली है, इसलिए समय समय पे उसको क्या करना पड़ता है, पॉलिश करवाना पड़ता है। फिर उसको कहते हैं परफ्यूम से दूर रखना, इससे स्प्रिट से दूर रखना, पानी नहीं लगने देना, है कि नहीं? तो ये नकली है। तो संसार के गुण सारे नकली है, वो थोड़े समय के लिए होते फिर चले जाते। जैसे हमारे बाल कब सफेद हो गए हमें नहीं पता, क्योंकि हम कंटिन्यू कलर लगा रहे हैं। कई लोगों के दांत नकली है, कई लोगों के बाल नकली है। तो ये संसार के गुण नकली है, टेम्पररी है, चले जाते, लेकिन कृष्ण के गुण असली है। इसलिए असली की तरफ जाओ, नकली की तरफ नहीं। नकली की तरफ जाओगे तो थोड़े दिन में वो ब्यूटी चली जाएगी और आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपने ब्यूटी देखकर रिश्ता किया है, आपने उसका हैंडसम बॉडी देखकर रिश्ता किया, तो उस समय में चला जाएगा, फिर आप क्या करोगे। लेकिन कृष्ण असली है, इसलिए असली की ओर जाओ। हम कहते हैं सोना लो, लेकिन असली लो, एक स्वाभाविक बात। आप नकली लेकर आओगे तो फिर रोओगे, तो हमें मत कहना। ऐसे ही हम नकली ब्यूटी, नकली गुण की तरफ भागते जो समय के साथ साथ बदलते। कृष्ण असली है, वहां जाओ, वो कभी बदलेगे नहीं। इसलिए आपका प्यार और आपका रिश्ता भी हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो बदलेगा नहीं। जी, और कोई?
जय श्री कृष्ण बापू जी। बापू जी, आपने सत्संग में बताया था कि भी जब सफर में हम जाते हैं तो धन को संभालते हैं, ऐसे ही भक्ति में आते हैं तो हमको श्रद्धा और विश्वास को संभालना पड़ता है, वो कैसे है?
देखो, अगर आप अपनी श्रद्धा विश्वास संभालना चाहते हैं तो निंदकों को तो दूर रहो, क्योंकि गुरु ग्रंथ जी महाराज भी कहते हैं संत का निंदक मां हत्या। तो जो निंदा है वो हत्या कर देते किस चीज की, आपकी श्रद्धा की। वो हत्या कर देते किस चीज की, आपके विश्वास की। जैसे एक व्यक्ति आपके गुरु की निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से समर्पित हो, तो आपके मन में शंका कहीं ना कहीं आ जाएगी, भले थोड़ी देर के लिए ही आएगी। तो उसने आपकी श्रद्धा को क्या किया, हिला के रख दिया, आपकी श्रद्धा को हिला दिया। अब हिलते 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 यदि वो विचार आपके मन में और गहरे हो गए, तो जो हिलती है चीज वो कभी गिर भी जाती है, अर्थात आपकी श्रद्धा की उस व्यक्ति ने हत्या कर दी, आपकी श्रद्धा टूट गई, आपकी श्रद्धा मर गई, आपका विश्वास समाप्त हो गया। और जब आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास समाप्त हो गया, तो फिर आप भी उस जैसे हो गए, फिर आप भी ऐसी बातें करोगे। कैसी बातें? जैसी वो करता है, फिर आप दूसरे के पास बोलोगे कि सुनो एक बात बताऊं, क्या हुआ? बोला मेरा मन जो है ना कुछ दिनों से बहुत परेशान चलता है, बहुत मैं विचलित हो गया हूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। क्या, क्यों भाई, क्या हुआ? बोला मैंने ऐसे ऐसे सुना है। सुना है, देखा नहीं, लेकिन फिर भी भरोसा कर लिया। ऐसे ऐसे मैंने सुना है। तो बोला आप अपना तो विश्वास उठ गया है और मैंने वहां जाना छोड़ दिया है, तो बोला आप तू भी मत जा। अब उससे बीमारी इसको लगी, इसकी बीमारी उसको लगी। इसलिए कहते संत का निंदक माह हत्यारा, उसने उसकी श्रद्धा की हत्या कर दी। जब कोई किसी की हत्या करता है तो उसको दंड कौन सा मिलता है? मृत्यु दंड। तो गुरु ग्रंथ जी महाराज भी कहते संत का निंदक माह हत्यारा, तो संत का निंदक परमेश्वर मारा, उसको ईश्वर की मार पड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु ग्रंथ जी महाराज लिखते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो हम सुने वो कान सुना सच हो, और ये भी जरूरी नहीं कि आंख देखा भी सच हो। अब एक राजा था, वो कहीं दूसरे राज्य में गया था, और यहां उसके महल में, क्योंकि राजघराने की स्त्रियां बाहर नहीं जाती थी, तो उनके महल में ही सारे व्यवस्था होती थी। तो रामलीला की व्यवस्था थी, और उस रामलीला में जो राजा की बेटी थी वो किसी राजा का रूप बना के रामलीला में पार्ट ले रही थी। अब एक दिन रामलीला में थोड़ी देर हो गई, तो वो लड़की जो थी उसने कौन सा वेश बना रखा था? राजा का वेश बना रखा था, ऐसे मूछे, दाढ़ी, सर पे पगड़ी, सारा ऐसा कपड़ा। लेकिन बहुत नींद आ रही थी, इसलिए अपनी माँ के साथ ही कमरे में सो गई, क्योंकि पिताजी थे नहीं, इसलिए वो अपनी माँ के साथ ही कमरे में सो गई। अब उस जमाने में कोई बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी कुछ नहीं था। क्या जलते थे? दिए जलते थे, और जब रात को लोग सोते थे तो दिए की लो कम कर देते थे। अब संयोग से राजा उस रात को जल्दी आ गया, तो देखता है कि अपने रूम में ओह गड़बड़ हो गई। क्यों? बोला मेरी पत्नी के साथ कोई और पुरुष सोया पड़ा है। एक तो अंधेरा था, दिए की लो कम थी, और देखा कि उसकी मूछें हैं, दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है, और पुरुष का पूरा वेश पहना है और सोई हुई है। मेरी पत्नी ऐसे? बहुत ही उसे क्रोध आया और म्यान से तलवार निकाली। राजा है, खून गर्म होते देर नहीं लगी, क्षत्रिय राजा निकाली तलवार, दोनों को मार देता। लेकिन जैसी तलवार निकाली, अपने गुरु के शब्द याद आए कि कभी कभी आंख देखा और कान सुना भी गलत होता है। तुरंत वो शब्द याद आए और उसने तलवार को रोक लिया और सोचा मारना तो है ही, पहले देखो तो सही ये कौन है, किस का बेटा है, कौन है। इसलिए उसने गुस्से में क्या किया, उसकी जो पगड़ी थी तलवार की नोक से उठा दिया उसे करके। और जैसे ही पगड़ी तलवार की नोक से उठाई, लड़की झट से गुस्से से डर के उठ गई। और जैसे ही डर के उठी तो उसके बाल जो थे वो खुल गए, और लड़की ने देखते अपने पिता को कहा, पिताजी इसके तो हाथ पांव, हाथ पांव ढीले हो गए। अरे राम राम राम, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता था। तब उसकी पत्नी हंसने लग गई, बोला काम माफ कर दे, मेरे गुरु महाराज को धन्य है कि उनके शब्दों ने हमारी जिंदगी, हमारा घर बर्बाद होने से बचा लिया, क्योंकि उनके शब्द याद आ गए कि कान सुना और आंख देखा भी गलत हो सकता है, हो सकता। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। इसलिए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो तो बोल के चला गया। और मजे की बात एक सुनाओ, एक व्यक्ति अननोन है जिसको आप आधे घंटे से, मतलब 20 मिनट से जानते हो, 20 मिनट से आपकी बात की, और आपका रिश्ता 20 साल से जुड़ा है, लेकिन 20 मिनट की बात वो 20 साल के रिश्ते को तोड़ सकती है। आई समझ? और अच्छे खासे लोग थोड़ी देर के लिए तो हिल जाते हैं, बाद में वो पटरी पे आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हिल जाते हैं। और ये तो शुक्र है कि हिले और गिरे होते तो आज धोबी का कुत्ता न घर का रहता न घाट का रहता। श्रद्धा तो टूट गई, तो जो थोड़ा बहुत करते थे वो भी चला गया, तो ना इधर के रहे ना उधर। इसलिए निंदकों से दूर रहो। शास्त्र भी कहता है कि जहां गुरु की निंदा हो वहां से उठ जाओ। बाकी तो तीन चीजें और है लेकिन बताना नहीं चाहता हूं। जहां गुरु की निंदा हो उन वहां से उठ जाओ, या उनका त्याग कर दो, उस कंपनी का, उस बैठक का त्याग करके चले जाओ। लेकिन कभी कभी कुछ लोग हमारे घर में ही होते, वहां से तो उठ नहीं सकते, तब क्या करें? उस समय आपके प्रेम की परीक्षा है, क्योंकि ये मुझ पे बीत चुकी है और बीती हुई बात बता रहा हूं कि न जाने मेरे पास किस तरह से कितने लोगों ने क्या क्या कहा था। और कहने वाले ऐसे थे कि राजा हरिश्चंद्र साक्षात सामने खड़ा हो, इतने सत्य बोलने वाले लोग कहते थे ये तो इतने महान है, लेकिन मुझ पे 0.1% का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं पहले से और मजबूत हो गया। याद रखना, सीमेंट की बोरी में पानी गिर जाए तो सीमेंट खराब हो जाती है, लेकिन उस सीमेंट की जब बिल्डिंग बनती है और उसमें पानी गिराया जाए तो और मजबूत हो जाती है। इसी तरह से जो संसारिक भटके हुए लोग हैं उनके पास निंदा उनको और खराब कर देती है, लेकिन जिनके घर में एक मंदिर, जिनके हृदय में अपने गुरु के लिए एक स्थान बन चुका है, उस पे पानी गिराओ तो और मजबूत हो जाता है, वो बिल्डिंग और मजबूत हो जाता है। इसलिए निंदकों से दूर रहो, बेहतर यही है, क्योंकि वो तो निंदा करके चले जाएंगे, लेकिन आपका भजन, आपकी साधना, आपकी सत्संग सब बर्बाद हो जाएगी। जी, और कोई प्रश्न?
बापू जी, कृष्णा कहते हैं कांक्षत कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते ये देवता, जो सकाम कर्मों का फल चाहते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। और फिर सातवें अध्याय में कहते हैं कामई तैतई ते हृतज्ञा प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो उनकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा मारी जा चुकी है, हरी जा चुकी है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। तो बापू जी, आजकल तो सबको इच्छाएं अपनी पूरी करनी है, पर कृष्ण कहते हैं योगक्षेम वाम्यम, मैं तो आवश्यकताएं पूरी करूंगा, जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है उसकी मैं सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। तो लोगों को तो इच्छाएं पूरी करनी है, आवश्यकताएं नहीं, तो फिर वो कृष्ण की शरण में कैसे आएंगे?
देखो सुनो, भगवान हमारी माता जैसे और देवता एक दुकानदार शॉपकीपर है। आप शॉपकीपर पास जाओ, आप कहोगे मुझे आइसक्रीम खानी है, वो कहेगा लाओ 100 रुपए दो। आपने उसको 100 रुपए दिए, उसने आपको आइसक्रीम दी। एग्जैक्ट वही चीज आप मां से बोलोगे मुझे आइसक्रीम दो, वो देखेगी कि तो सर्दी, खांसी, नमूनिया, बुखार है, वो आप रो रो के पागल हो जाओगे, नहीं देगी, बल्कि क्या देगी? दवाई देगी, आप पागल हो जाओगे क्या? मांगा आइसक्रीम, दे रही है दवाई। तो दुकानदार आपको सिंपल क्या दे देगा? आपने पैसे दिए, आपको आइसक्रीम दे दी, आपने मांगी, आपको दे दी। आप बीमार हो या मरो, उससे आप उससे उस दुकानदार का उसने आपकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन माँ देखेगी नहीं देगी, बल्कि जो इच्छा है उसके उलट देगी। आपने मांगी आइसक्रीम, दे दी दवाई, क्योंकि वो आपकी माँ है, वो आपको वो नहीं देगी जो आपको अच्छा लगता है, आपको वो देगी जिसमें आपका भला होगा। देवता ये नहीं देखेंगे कि इसमें आपका भला है नहीं है, आपने मांगा आपको दे दिया। ये है फर्क भगवान और देवता में। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि आप ये मत सोचना कि भगवान आपकी इच्छा पूरी करने में सक्षम नहीं है। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे नानक दास मुख से जनिके, यहां वहां सत्य होए। देवता आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन पिता तो आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे देंगे। समझ में आई? इसी तरह से कृष्ण हमारे पिता है, और उन्होंने कहा योगक्षेम अहम्यहम्, तुम्हें जो जो चाहिए वो जरूरतें मैं पूरी कर दूंगा। और एक बात याद रखो, इंसान की हर जरूरत पूरी हो उसको इच्छा हो गई नहीं। जैसे एक पति स्त्री की हर जरूरत पूरी करता है, वो क्या इच्छा करेगी? तो ऐसे ऐसे कभी कभी अपने मैके में जाती है तो बोलती, मेरे पति ने मेरी हर इच्छा पूरी की है। तो पिता बोलता है, बेटा कुछ चाहिए क्या? तो नहीं पापा, मुझे सब मेरा हस्बैंड सब लेके देता, मैं क्या मांगूंगा, सब कुछ बिल्कुल भरा पड़ा है। तो भगवान अपने भक्त की हर जरूरत को पूरी करता, वो इच्छा किस चीज की करेगा, किस चीज की इच्छा करेगा? और दूसरों से ज्यादा जितनी इज्जत एक साधारण व्यक्ति की नहीं है, उससे ज्यादा इज्जत भक्तों की होती है। आज एक हीरो मान लो बॉलीवुड का है, लोग उसके पीछे पागल हैं। कब तक? जब तक उसकी फिल्में आ रही है। मुझे बताओ, एक तरफ जितेंद्र निकले रोड पे और एक तरफ रणवीर कपूर निकले, लोग कहां भागेंगे? वो जितेंद्र को कोई देख नहीं, क्योंकि उसका जमा गया, अब रणवीर कपूर के पीछे भागेंगे। ऐसी कई हीरोइनें एयरपोर्ट पे होती है जो बिचारी अकेली जा रही है, और एक हीरोइन के पीछे 10 तो पैपरे भागते हैं, उनके पीछे लोग भागते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। लेकिन भगवान के भक्त 500 साल के बाद भी लोग आज भी उनको उतना ही प्यार करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी महाराज को हम में से किसी ने नहीं देखा, बल्कि किसी ने हो सकता है सुना भी ना हो, लेकिन आज प्रभुपाद जी की पूरी दुनिया इज्जत मान सम्मान, और समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, इनका समय के साथ साथ कम होता जाता है। आज क्या तो मायापुर में मंदिर बन रहा है, प्रभुपाद की महिमा कितनी बढ़ रही है। और यहाँ इनके बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, और यहाँ इनके बंगले बिक रहे हैं, यहाँ इनके बंगले बिक रहे हैं। अभी परसों तरसों ही मैं सुन रहा था, कहीं था कि राजेश खन्ना का बंगला भी बेच दिया, राज कपूर का पूरा स्टूडियो आरके स्टूडियो भी बेच दिया, और वो कौन था पता नहीं, कितनों के बंगले बिक गए। हालांकि वो सब संसार के बहुत प्रख्यात लोग, उनके घर बिक रहे हैं, और यह महापुरुषों के घर बड़े बड़े बन रहे हैं। चाहो मायापुर में देख के आओ, क्या तो प्रभुपाद की समाधि है, क्या तो प्रभुपाद के मंदिर बन रहे हैं। तो समय के साथ साथ इनकी महिमा बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं, संत भगवान के लाडले हैं। आप देखें प्रेमानंद बाबा वृंदावन से बाहर ही निकलते हैं, वो वृंदावन से बाहर ही निकले लेकिन लोग वृंदावन उनके कारण जा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जा रहे हैं, जिनके पास लोग जाते वो उनके पास आ रहे हैं। जो सिर्फ एक ही खूबी है भगवान की शरण में, सिर्फ एक ही खूबी है वो भगवान की महिमा गाते हैं, भगवान की महिमा बढ़ाते हैं। और कृष्ण क्या कहते हैं, यही यथा माम प्रबदंती तामस तथा एव बजामि, क्योंकि संत भगवान की महिमा बढ़ाते हैं, भगवान संतों की महिमा बढ़ाते हैं। संतों की महिमा बढ़ रही है दिन ब दिन, लोग मीडिया में कुछ भी बोल रहे हैं संतों के लिए, कोई इतने मीम्स बना रहे हैं, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई निंदाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संतों की महिमा बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और इन संसारिक लोगों की महिमा दिन ब दिन कम होती जा रही है और लोग भूल भी जाते हैं। मैं एयरपोर्ट पे था तो मेरे साथ अपने वक्त के एक सुपर हिट हीरो मेरे साथ थे, तो उनसे मेरी कुछ बातें हो रही थी। मैं देख रहा था कि जमाने में जब ये आते थे तो दुनिया पागलों की तरह इनके पीछे थी, आज ही अपना बोर्डिंग कार्ड भी खुद बनवा रहा है, समझे। तो संसारिक लोगों की महिमा चाहे कितनी भी हो समय के साथ साथ कम होती जाती है, और संतों की महिमा समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, ये फर्क है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की इतनी जरूरतें पूरी कर देते हैं कि उनको कुछ इच्छाएं भी नहीं होती, और अगर इच्छा होती भी है तो क्यों नहीं पूरी करते, क्यों नहीं पूरी करते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, मारे जाते हैं। अगर हम कृष्ण के लिए सोचेंगे ना तो कृष्ण हमारे लिए जितना हम सोचते उससे ज्यादा सोचेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दो, एक बच्चा आता है 2 बरस का, एक चॉकलेट लेके, और वो अपने पापा को खिलाता है, तो खा जाएगा पापा, क्या करेगा, पापा खाएगा। बल्कि पहले वो बच्चा अपने हाथ में चॉकलेट पकड़ा है और खा पापा को दे रहा है, पापा क्या करेंगे, उसके हाथ से लेके उसको खिलाएंगे और अपने हाथ से खिलाएंगे, और उसका स्नेह और बढ़ेगा। इसी तरह से हम जब कुछ कृष्ण के लिए सोचते हैं, कृष्ण का स्नेह हमारे प्रति और बढ़ता है, और जब हम उसके लिए सोचते हैं तो हम तो सोचते हैं, हम अपनी बुद्धि अपनी कैपेसिटी से सोचते, और जब वह हमारे लिए सोचता है तो अपनी कैपेसिटी से सोचता है। इतना याद रखना, इतना याद रखना, जब वो हमारे लिए सोचता है ना तो अपनी कैपेसिटी से सोचता है। हम 2 हाथ वाले लोग हैं, वो 1000 हाथ वाला है। इसलिए बुद्धिशाली यही है, कृष्ण के पास जाओ, वो इतना सक्षम है। अरे वो तो स्वाभाविक बात है कि जब बाप करोड़पति हो तो पड़ोसी से कौन क्यों मांगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हम बाप को पहचानते नहीं है, हम तो बीच बचपन में ही गुम हो गए और अभी तक गुम है, और फिर गाना गाते, गुम है किसी के प्यार में। हाँ कौन गा रहा था, हाँ गुम है किसी की प्यार में दिल सुबह शाम, तो गुम ही रहो, और एक दिन गुम रहते रहते गुम हो जाओगे और तुम्हारा नाम भी गुम हो जाएगा। इसलिए किसी के प्यार में गुम हो जाने के बजाय उसके प्यार में गुम हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, समझ आई। तो आप जो सोचोगे ना कृष्ण के लिए, आप अपनी कैपेसिटी से सोचोगे, फिर जो आपके लिए वो सोचेगा तो वो अपनी कैपेसिटी से सोचेगा, और इतना सोचेगा कि संभाल भी नहीं पाओगे, संभाल भी नहीं पाओगे। नित्य भजो।